अध्याय तीन, हिंदी सूफी काव्य की भाषा। ठेठ अवधि, जनता की बोली, सूफी काव्य की भाषा। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने इवोल्यूशन ऑफ अवधि में अवधि का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी भाषा की चार प्रधान उपभाषाएं हैं, इनमें पूर्वी हिंदी भी एक उपभाषा है। पूर्वी हिंदी का विकास प्राचीन अर्धमागधी प्राकृत से हुआ है। पूर्वी हिंदी की दो प्रमुख बोलियां हैं, अवधी और छत्तीसगढ़ी। विशेष विवरण के लिए देखिए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, इवोल्यूशन ऑफ अवधी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा और लिपि पृष्ठ 50, पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की गणना की है। हरदोई जिले को छोड़कर शेष अवध की बोली अवधी है। वह लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी में बोली जाती है, किंतु इन जिलों के अतिरिक्त दक्षिण में गंगापार, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर तथा जौनपुर के कुछ भागों में भी बोली जाती है। मिश्रित अवधि का विस्तार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले तक है। पद्मावत, चित्ररेखा, रामचरितमानस, कृष्णायन आदि अवधि के सुप्रसिद्ध ग्रंथ रत्न हैं। पद्मावत की भाषा पूर्वी अवधि है, उसमें पश्चिमी हिंदी, फारसी, अरबी और संस्कृत शब्दों के भी प्रयोग प्राप्त होते हैं। श्री सूर्यकांत शास्त्री का कथन है कि जायसी की कृतियों से हमें 16वीं शताब्दी के उत्तर भारत की जनभाषा का यथार्थ प्रमाण मिलता है। सूर्यकांत शास्त्री, पद्मावती, 1934 ईस्वी, प्रीफेस पृष्ठ 6। हिज वर्क्स देयरफॉर इज अ वैल्यूएबल विटनेस टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इन द 16th सेंचुरी। 12वीं-13वीं शताब्दी में द्राविड़ भाषा भाषी आंध्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को छोड़कर भारत के सभी प्रांतों की एक सम्मिलित भाषा थी। राहुल सांकृत्यायन, हिंदी काव्यधारा पृष्ठ 12। स्वयंभू जैसे कवियों की भाषा को पुरानी अवधि पृष्ठ संख्या 324 या कौसली कहते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि दूसरी प्रांतीय भाषाओं से उसका कोई संबंध नहीं था। वस्तुतः उस वक्त उत्तर भारत की सारी भाषाएं एक दूसरे के बहुत नजदीक थीं। राहुल सांकृत्यायन, हिंदी काव्यधारा पृष्ठ 6। अपभ्रंश के कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे। उन्होंने एक योग्य पुत्र की तरह काव्य क्षेत्र में नया सृजन किया, नए चमत्कार, नए भाव पैदा किए। यह स्वयंभू, पुष्पदंत आदि की कविताओं से अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। नए नए छंदों की सृष्टि करना तो इनका अद्भुत कर्तृत्व है। दोहा, सोठा, चौपाई, छप्पाई आदि कई सौ ऐसे नए नए छंदों की उन्होंने सृष्टि की, जिन्हें हिंदी कवियों ने बराबर अपनाया है, यद्यपि सबको नहीं। विद्यापति, कबीर, सूर, जायसी और तुलसी के यही उज्जीवक और प्रथम प्रेरक रहे हैं। सूफी कवियों की विशेषता रही है कि वे प्रायः स्थानीय भाषाओं में ही अपने काव्यों की रचना करते रहे हैं। दौलत काजी, अलाओल आदि ने, जो बंगाल के रहने वाले थे, बंगला में लिखा। इस्लामी बांग्ला साहित्य, सुकुमार सेन। पंजाब के सूफी कवियों ने पंजाबी में शशि पूनो, हीर रांझा आदि की सृजना की है। पंजाबी सूफी पोइट्स, लाजवंती रामकृष्ण। यह सत्य है कि स्थानीय भाषा में संदेश सुनाकर किसी स्थान की जनता पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डाला जा सकता है। शेख फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपने शिष्यों से बातचीत करते समय हिंदवी का उपयोग करते थे। ये उपदेश सियातुल औलिया में सुरक्षित हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी अपनी बातचीत के लिए हिंदवी का प्रयोग करते थे। ग्लिम्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन कल्चर, यूसुफ हुसैन पृष्ठ 105। फारसी के प्रसिद्ध महाकवि अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं को पर्याप्त प्रसिद्धि मिल चुकी है। जनता में अपना संदेश सुनाने के लिए मुल्ला दाऊद ने अवधि का ही चयन करना सर्वोत्तम समझा होगा। मुल्ला दाऊद से पूर्व अवधि की काव्य परंपरा विकसित हो चुकी थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जिया ने ठीक ही लिखा था कि कोसली भाषा 12वीं शताब्दी के मध्य में पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर पंडित, भूमिका पृष्ठ 70। जिसे आजकल हम अवधि कहते हैं, उसे डॉक्टर चाटुर्जिया ने पूर्वी हिंदी की एक बोली कोसली कहा है। यह अवध जनपद और पूर्वी मध्य प्रदेश की भाषा थी। स्पष्ट है कि अवधि के रूप में यह कोसली पूर्वी हिंदी का एक रूप है। इसी में पीछे चलकर सत्यवती कथा, पद्मावत, रामचरितमानस आदि लिखे गए हैं। वही पृष्ठ 2। डॉक्टर मोती चंद्र का कथन है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर से स्पष्ट विदित हो जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनभाषा पूर्वी हिंदी को संस्कृत के पंडितों से भी मान्यता प्राप्त हो रही थी, पृष्ठ संख्या 325, और भाषा निर्माण काल में नहीं थी बल्कि पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, और संभवतः इस भाषा का अपना साहित्य भी था जो खो चुका है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर पंडित, पृष्ठ 74। विद्वानों, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भूमिका, डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जिया और डॉक्टर मोती चंद्र पृष्ठ 44 का विचार है कि पूर्वी हिंदी का विकास 12वीं शताब्दी के मध्य में हो चुका था। रोडा कवि कृत राहुल वेल 11वीं सदी की कृति है। यह कवि रोडा की ललित कलात्मक अभिव्यक्ति है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित शिलालेख। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का कथन है कि इसकी भाषा पुरानी दक्षिणी कोसली है, जिस प्रकार उक्ति व्यक्ति प्रकरण की पुरानी कोसली है। हिंदी अनुशीलन वर्ष 13 अंक 12 1960 ईस्वी पृष्ठ 23। सामान्य रूप से इसमें पोस्ट अपभ्रंश भाषा द्रष्टव्य है। निश्चय ही यह भाषा अपभ्रंश तत्वों के पर्याप्त सम्मिश्रण से न्यू इंडो आर्यन स्टेट से संबद्ध है। इसमें उत्तर भारत के 6 विभिन्न भाषाओं के प्रदेशों की सुंदर कन्याओं के व्यक्तिक सौंदर्य व्यवहार वेशभूषा अलंकरण प्रसाधन आदि का ललित वर्णन है। इसमें वर्तमान अवधि का पूर्व रूप भी सुरक्षित है। भारतीय विद्या प्रोफेसर हु एच भायाणी भा वी भवन बम्बई वॉल्यूम 17 पृष्ठ 132। इस कृति के प्रकाशन से स्पष्ट हो जाता है कि दाऊद की कृति चंदायन अवधि की प्रथम कृति नहीं है। अवश्य में इसके पूर्व अवधि काव्य की एक विशाल परंपरा रही है। शोध के आलोक में 11वीं से 14वीं सदी के बीच का अवधि साहित्य भी प्राप्त हो सकेगा, ऐसी संभावना रोडा का विकृत राहुल वेल की प्राप्ति के अनंतर बलवती हो गई है। लिंग्विस्टिक सर्वे से अज्ञात होता है कि मुजफ्फरपुर तक बिहारी भाषाओं के क्षेत्रों के मुसलमान अवधि को ही अपनी बोलचाल की भाषा मानते हैं। इसलिए अवधि के इन पूर्ववर्ती क्षेत्रों के सूफी और संत मुसलमान कवियों ने यदि अवधि में रचनाएं की तो अपनी बोलचाल की भाषा में ही की। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 6 पृष्ठ 9। धीरे धीरे अवधि वहाँ के सूफियों की सांप्रदायिक भाषा और प्रेम पीर की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई। यहाँ के सूफी कवियों ने फारसी अरबी के शब्दों का अपेक्षाकृत कम उपयोग किया है। दक्षिण के प्रेमाख्यानों की दक्षिणी हिंदी या हिंदवी भाषा पर फारसी अरबी का गहरा प्रभाव है। हिंदी के सूफी कवियों ने भाषा को एक रूपता और स्थिरता प्रदान की और उनकी हिंदी साहित्य को एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। इन कवियों की विशेषता रही कि वे जहाँ कहीं गए वहाँ की जनबोली को उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। पृष्ठ संख्या 326। जितने औलियाए अल्लाह सरजमीने हिंदी में आए या यहाँ पैदा हुए, वे बावजूद आलिमों फाजिल होने के खवास खास लोगों को छोड़कर आवाम जनसाधारण से इन्हीं की बोली में बातचीत करते थे और तालीम व तलकीन शिक्षा और दीक्षा फरमाते थे। मोहम्मद अब्दुल हक उर्दू की इब्तदाई नशबो नुमा में सूफियाए किराम के काम पृष्ठ 4। मुसलमान भी यहाँ की जबान से मोहब्बत रखते थे। चुनांचे 16वीं सदी ईस्वी शेरशाही अहद में मलिक मोहम्मद जायसी एक शायर हुआ। उसने पद्मावत की दास्तान नज्म की। इससे अहद मजकूर की जबान ही नहीं मालूम होती बल्कि साबित होता है कि मुसलमान इस मुल्क में रहकर यहाँ की जबान को किस प्यार से बोलने लगे थे। इसकी बहर भी हिंदी रखी है और वरक के वरक उलटते चले जाओ अरबी फारसी का लफ्ज नहीं मिलता। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आबे हयात पृष्ठ 18। ऐसा तो नहीं कि पद्मावत में अरबी फारसी के लफ्ज नहीं मिलते, पर यह अवश्य है कि इन सूफियों ने प्रेम पीर की अभिव्यक्ति के लिए स्थानीय भाषा को ही गृहित किया। ये कवि अपने प्रदेश की भाषा को हिंदवी हिंदी या हिंदुई कहते थे। इसके लिए हिंदुस्तान की हर जबान हिंदवी या हिंदी थी। चुनांचे अपने अरबी और फारसी से मुमताज करने के लिए उन्होंने अपने अपने इलाकों की बोलियों को हिंदवी या हिंदी के आम नाम से पुकारना शुरू किया। यही वजह है कि पंजाब दिल्ली दक्कन और गुजरात में इस अहद की बोली के जो कदीम नमूने मिलते हैं उन सबको हिंदवी और हिंदी कहा गया है। 13वीं 14वीं सदी में देसी भाषा को हिंदी या हिंदवी या हिंदुई नाम देने में अबुल हसन या अमीर खुसरो 1253-1325 ईस्वी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य कोश पृष्ठ 888। जैसी ने भी हिंदुई जैसी ग्रंथावली नागर पिछाड़ी सभा पृष्ठ 301 शब्द का प्रयोग किया है। उत्तरी भारत के साथ ही दक्षिणी के सूफी कवियों ने भी हिंदवी को अपनाया है। अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ उत्तरी हिंदी के सूफी कवियों की भाषा अवधी है उसमें अरबी फारसी की ओर कम झुकाव है, वहाँ दक्षिणी के सूफी काव्यों में अरबी फारसी शब्दों की ओर अधिक झुकाव है। उत्तरी भारत के हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा प्रायः सर्वत्र अवधि दीख पड़ती है और उसमें भी प्रायः अवधि के ठेठ रूप का ही प्रयोग हुआ है। उस्मान और नसीर पर कुछ भोजपुरी का प्रभाव लक्षित होता है। नूर मोहम्मद की इंद्रावती में भोजपुरी और ब्रजभाषा दोनों के प्रयोग भी स्पष्ट रूप से मिलते हैं। इन सूफी कवियों ने प्रायः तद्भव बहुला अवधि भाषा का प्रयोग किया है। यद्यपि सूफी काव्यों में प्रयुक्त अवधि संस्कृत के तत्सम शब्दों और उनकी कोमल कांत पदावलियों से अलंकृत नहीं है, तथापि वह तत्कालीन शिष्ट जन समादृत पृष्ठ संख्या 327 बोलचाल की अवधि भाषा की स्वाभाविक विशेषताओं से मंडित हैं। उनकी अवधि स्वाभाविक एवं श्रुति मधुर है। कुछ लोगों का कथन है कि वह संस्कृत निष्ठ साहित्यिक और परिष्कृत नहीं है, फिर भी अवधि के स्वाभाविक रूप में उसका लालित्य और माधुर्य हृदयग्राही है। इन महान कवियों ने अपनी समर्थ लेखनी से जिस भाषा को महान साहित्य भाषा का रूप प्रदान किया है उसे साहित्यिक न मानना अन्याय है। अवधी भाषा का परिष्कृत और स्वाभाविक दोनों रूप गंगा जमुनी संगम की भांति सूफी काव्यों की भाषा में दर्शनीय है। दाऊद, जायसी, कुतुबन आदि सूफियों की विशेषता यह है कि उन्होंने बोलचाल की अवधि में सहज सरल किंतु गूढ़ गंभीर अर्थपूर्ण और समर्थ व्यंजनाएं की हैं। चंदायन की भाषा सीधी सादी और तद्भव बहुल अवधि है। पंडित परमेश्वरी लाल गुप्त का कहना है कि चंदायन की भाषा वह भाषा है जिसे दिल्ली के प्रधानमंत्री जौना शाह से लेकर दिल्ली की सामान्य जनता तक समझ सकती थी। चंदायन की रचना न तो अवधि भाषा में हुई थी और न उसका प्रारंभिक प्रचार अवधि के क्षेत्र के बीच का था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इस भाषा के संबंध में हमें अपनी कल्पना का कोई अवसर नहीं दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि इस मसनवी चंदायन की भाषा हिंदवी है। यह हिंदवी निश्चय ही वही हिंदवी रही होगी जिसका प्रयोग संत शेख फैदुद्दीन गंज शकर और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने मुरीदों से बातचीत करते समय किया करते थे। अतः चंदायन की भाषा को अवधि के सीमित क्षेत्र में समझी और बोली जाने वाली अवधि का नाम नहीं दिया जा सकता। चंदायन की भाषा निस्संदेह ऐसी भाषा का स्वरूप है जिसका देश में काफी विस्तार और विकास रहा होगा, किंतु खेद है कि हमारे सम्मुख तत्कालीन व्यवहार में आने वाली भाषा का कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं है जिसके आधार पर अधिक विस्तार से इस कथन की समीक्षा करें। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त, चंदायन परिचय, पृष्ठ 31-35। यदि चंदायन की रचना को हिंदवी कहा गया है तो इसका यह आशय नहीं कि वह अवधि नहीं है। यदि उसे जौना शाह से लेकर दिल्ली के सामान्य लोग भी समझते थे तो इसे आशय निकालना भी ठीक नहीं कि यह अवधि नहीं है। यदि इसका प्रचार अवधि क्षेत्र के बाहर हुआ तो भी इसका यह तात्पर्य नहीं कि इसकी भाषा अवधि नहीं है। जैसी की भाषा भी हिंदुई है, अन्य अनेक सूफी कवियों ने अपनी भाषा को हिंदी या हिंदवी या हिंदुई कहा है। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रूपों से चंदायन के कुछ रूपों की तुलना भी की है और निष्कर्ष निकाला है कि चंदायन की भाषा उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा से सर्वथा भिन्न है। यदि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा अवधि है, पृष्ठ संख्या 328, तो चंदायन की भाषा अवधि नहीं है। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त, चंदायन परिचय, पृष्ठ 31-35। इसके ठीक विपरीत डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इन दोनों ग्रंथों के कई सौ शब्द रूपों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि इन कुछ सौ रूपों में से 4-6 रूपों में ही रचना की भाषा उक्ति व्यक्ति प्रकरण से भिन्न दिखाई पड़ती है, अन्यथा वह उसके समान अथवा उससे विकसित प्रमाणित होती है। जैसी की भाषा से वह मिलती जुलती होते हुए भी किंचित पूर्व की स्थिति का आभास देती है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, चंदायन भूमिका, पृष्ठ 72। तात्पर्य यह कि चंदायन की भाषा पूर्वी हिंदी अवधि ही है। 11वीं शताब्दी ईस्वी के रोड़ा कवि की कृति राउर वेल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे 11वीं शताब्दी की रचना माना है। द्रष्टव्य हिंदी अनुशीलन, धीरेन्द्र वर्मा, विशेषांक, पृष्ठ 23। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसे 13वीं शताब्दी की रचना कहा है। चंदायन भूमिका, पृष्ठ 34-35। वस्तुतः यह 12वीं शताब्दी की रचना है कि भाषा भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। इसकी भाषा पुरानी दक्षिण कोसली है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 6, पृष्ठ 9। दक्षिण कोसली अवधि का पूर्व रूप है, अतः 11वीं शताब्दी में अवधि में काव्य रचना के उदाहरण मिल जाते हैं। राउल वेल का शिलालेख धार से प्राप्त हुआ है और वह प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई में सुरक्षित है। धार से प्राप्त होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि यह अवधि कैसे हो सकती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी अवधि की कृति है, इसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चंदायन से पूर्व अवधि या कोसली में ग्रंथ रचना की परंपरा विद्यमान थी। बहुत संभव है कि 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य की और भी कृतियां प्रकाश में आएं। राउल वेल की प्राप्ति से यह संभावना अधिक बलवती हो गई है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ठीक ही लिखा है कि मुजफ्फरपुर तक बिहारी भाषाओं के क्षेत्रों के भी मुसलमान अवधि को ही अपनी बोलचाल की भाषा मानते हैं, इसलिए अवधि के इन पूर्ववर्ती क्षेत्रों के सूफी और संत मुसलमान कवियों ने यदि अवधि में रचनाएं की तो अपनी बोलचाल की भाषा में ही की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर से स्पष्ट विदित होता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनभाषा पूर्वी हिंदी को संस्कृत के पंडितों से भी मान्यता प्राप्त हो रही थी और भाषा निर्माण काल में नहीं थी बल्कि पूर्ण विकसित हो चुकी थी और यह भाषा संभवतः इसका अपना साहित्य खो चुका है। डॉक्टर मोतीचंद्र, उक्ति व्यक्ति प्रकरण भूमिका, पृष्ठ 74। इस प्रकार स्पष्ट है कि 12वीं शताब्दी के मध्य में पृष्ठ संख्या 329 कोशली भाषा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। डॉक्टर मोतीचंद्र, उक्ति व्यक्ति प्रकरण भूमिका, पृष्ठ 70, जिसे हम अवधि कहते हैं वह कोसली ही है। वही डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जिया, भूमिका पृष्ठ 2, अवध तथा पूर्वी मध्य प्रदेश की यह भाषा थी। बाद में सत्यवती कथा, पद्मावत, रामचरितमानस आदि ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। वही पृष्ठ 2। मल्ला दाऊद दलमऊ रायबरेली के निवासी थे, वहाँ की भाषा अवधि है। शेख फैदुद्दीन गंज शकर अपने शिष्यों से हिंदवी में ही बात करते थे। उन्हें सियातुल औलिया में मीर खुर्द ने सुरक्षित किया है। यूसुफ हुसैन, ग्लिम्सेज ऑफ मेडिकल इंडियन कल्चर, पृष्ठ 105। फवायदुल फवायद में उल्लेख मिलता है कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बातचीत के दौरान हिंदवी का प्रयोग करते थे। वही पृष्ठ 105 अमीर खुसरो की हिंदी रचनाएं उपलब्ध हैं। ब्रजरत्नदास अमीर खुसरो की हिंदी रचनाएं, शेख हमीदुद्दीन नागरी 1284 ईस्वी, शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर 1323 ईस्वी, शेख सराजुद्दीन उस्मान 1356 ईस्वी, हजरत गेसुदराज बंदा नवाज, शेख बुरहानुद्दीन आदि सूफी संतों ने हिंदवी भाषा को अपनाया था। दक्षिणी हिंदी के सूफी कवियों ने हिंदवी में रचना करने का अनेक बार उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट होता है कि इन कवियों और संतों ने यहाँ की भाषा को अपनी अभिव्यक्ति के लिए माध्यम बनाया। चंद्रायन का अध्ययन करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसका अभी तक वैज्ञानिक रूप से संपादन नहीं हो सकता है। दूसरा, इसकी भाषा अवधि है। इस अवधि में अपभ्रंश के भी प्रयोग उसी प्रकार मिलते हैं जिस प्रकार पद्मावत में। मुल्ला दाऊद के बाद के हिंदी के सूफी कवियों ने अवधि को काव्य की भाषा के रूप में ग्रहण कर लिया। खुतबंद कृतमृगावती की भाषा भी अवधि है। यह भी लौकिक बोलचाल की अवधि है। इसमें देशज या ग्रामीण शब्दों की भरमार है। इसमें वह अनगढ़पन भी है जो कवि को अपभ्रंश, डिंगल और देसी से प्राप्त हुआ था। देसी शब्दों को चुन चुन कर रखने की बात भी कवि ने कही है। गाहा, दोहा, अरेल, अरज, सोरठा, चौपाई के सरज, शास्त्र आशर बहुते आए, और देसी चुनी चुनी कछुलाए, षट भाषा जो यही बाचा, पंडित बिन पूछत हो साचा। मृगावती, संपादक शिव गोपाल मिश्र, पृष्ठ 203। पृष्ठ संख्या 330। मृगावती की भाषा में उस काल के जौनपुर केंद्र की अवधि का स्वरूप रहा होगा। उस काल में जौनपुर से दिल्ली तक की भाषा में एक रूपता थी। कुतुबंद, जायसी आदि ने समान रूप से एक ही भाषा का प्रयोग किया है जो ठेठ शब्दों को प्रश्रय देती है। यही अवधि उस काल की जनता की भाषा थी। ऊपर दिए हुए मृगावती के अवतरण से स्पष्ट है कि कुतुबंद ने अपनी भाषा के विषय में लिखा है कि उन्होंने संस्कृत के शब्दों के साथ ही देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। उसमें षट भाषा का मेल है। यदि मृगावती की भाषा के साथ चंद्रायन, पद्मावत और मधुमालती की भाषा की तुलना करके देखा जाए तो ज्ञात होगा कि इन सबकी भाषा प्रायः एक सी है। ऐसी भाषा को सार्वदेशीय या राष्ट्रीय भाषा कहना उचित होगा। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त का कथन है कि कुतुबंद की अपनी तथा पूर्ववर्ती इतिहासकारों की जानी समझी बात की उपेक्षा कर मुसलमान कवियों के प्रेमाख्यानक काव्यों की भाषा को अवधि के रूप में प्रादेशिक भाषा कहना निराधार दुस्साहस के अतिरिक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता। उसे मध्यकालीन हिंदी, आरंभिक हिंदी या उत्तर भारतीय हिंदी जैसे किसी व्यापक नाम से पुकारना ही समीचीन होगा। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त, मृगावती, पृष्ठ 41। यहाँ इस संदर्भ में इतना ही कहना है कि मृगावती की भाषा तो अवधि ही है। हाँ, उस पर अनेक बोली और भाषाओं की छाप मिलती है। उसमें अपभ्रंश के शब्द हैं। कीर्ति लता में प्रयुक्त देसिल बैना की विभक्तियाँ और परसर्गों की बहुत बड़ी संख्या भी मिलती है। उसमें खड़ी बोली के भी कुछ प्रयोग मिलते हैं। फारसी के भी बहुत से शब्द मिलते हैं।